धन्यवाद मंगलाचरण के तीन श्लोक अमृतचंद्राचार्य द्वारा रचित और एक गाथा की चर्चा की, उसकी टीका की चर्चा की। पहला जो श्लोक मंगलाचरण का आया था उसमें नमस्कार किसको किया गया है?
हाँ तो पूजा करिए, आपको उत्तर बताने के लिए
बोलिए।
आप
बोलिए डायरेक्ट, आप बोलते जाइए मेरी तरफ। ठीक है, ठीक बात है। शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है, नमाज समाज सहारा है। और शुद्ध आत्मा का नमस्कार काहे से होता, किस विधि से होता? शुद्ध आत्मा का नमस्कार की विधि क्या है?
हाँ आप बोलिए, आप बोलिए पीछे से। और पुरुषों से कोई नहीं बता रहा है क्या? हाँ बोलिए।
स्वानुभूत्या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात यह है कि उसमें जो द्रव का लक्षण आया है वो कौन सा शब्द है जो द्रव के लक्षण को होता था?
जब पुरुषों में से
सभी लोग होता है
सत्ता को होता था और वो अन्य द्रव्यों से धीर ज्ञान करा सके, ऐसा लक्षण कौन सा है, ऐसा गुण कौन सा है? चित्त स्वभाव है। ज्ञान दर्शन में श्लोक में श्लोक श्लोक में जो शब्द आए चित्त स्वभाव है। और पर्याय के स्वभाव को दिखाने वाला कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं उसी का था, उसी में
पर्याय किए कौन सा बोले
बोलिए। सर्वभावांतर ये पर्याय का स्वभाव है, ज्ञान पर्याय का ये स्वभाव है कि जगत के सर्व द्रव्यों की, उनके गुणों की, उनके पर्यायों को वो अपने में झलका सकता है, ऐसा उसका स्वभाव। ऐसा झलका सकता है कि बात नहीं है, सर्वज्ञ अगर ज्ञान सर्वज्ञ का है तो झलकाता ही। चलिए दूसरी बात, दूसरा श्लोक जो आया था वो श्लोक था अपना जिनवाणी के मंगलाचरण का, अनंत धर्मनाश तत्वम। तत्वम तो एक वचन है, गजब बात है, लेकिन तत्व के जो धर्म है वो एक नहीं, कई धर्म है। तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, अनंत धर्मनाश तत्वम पश्यन्ति प्रत्येकात्मना, आत्मा को अन्य द्रव्यों से ये जिनवाणी कैसा देखती है? माने भिन्न देखती है, लेकिन भिन्न तो देखती है पर भिन्न देखने में भी किस रूप देखती है? एक धर्मात्मक देखती है या अनंत धर्मात्मक देखती है? अनंत धर्मात्मक देखती है, अनंत धर्मात्मक। पश्यन्ति प्रत्येकात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य देव प्रकाशित, वो जिनवाणी हमारे अंदर में नित्य प्रकाशित रहे। कौन सी जिनवाणी? जो हर वस्तु को अनेकांत स्वरूप देखती है वो जिनवाणी मेरे अंदर में निरंतर प्रकाशित। ये बात आई थी ना। अभी तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में मैंने ये कहा था कि इस जीव के जगत में यहाँ जितने बैठे हैं जीवों के मूल रूप पर नमन चल रहा है, पर परिणति रूप पर नमन चल रहा है। तो अब इसमें पर परिणति होने में कारण कौन है, निमित्त कौन है? जरा आंसर सावधानी से देना, ये गलत होगा आंसर जो आप दोगे अगर सही नहीं दिया तो। हाँ देखना क्या जवाब दिया। चलो कौन बोल रहा है हमारे भाइयों में से बोले कोई? क्या कहा?
वो भोपाल वाले कह रहे हैं सो
कोई नहीं कह रहा था कि आप सही नहीं बोल पाओगे, हालांकि आप आदर सही बोले हो। अब इधर मोर जो है वो प्रभाव का कारण नहीं है, मोर में एकत्र करके जो मोर का अनुभव करता है उसके प्रभाव होता है।
आपने पूछा ना निमित्त कौन है,
हाँ निमित्त पूछा था ना, तो निमित्त कौन बनता है पर परिणामों का, तो वो परम मोह से उदय में जब ये तन्मय होता है
तो पर
अनुभव करता है ना, उसका मोह का अनुभव करता है तो पर परिणति का जन्म होता है। अब तीसरी बात इसमें आई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे विभिन्न वक्तागण जो अपनी बात रखते हैं तो उनका एक दृष्टिकोण होता, बिना दृष्टिकोण के कोई वक्ता बोलते ही नहीं, और मैं कहूँ तो काम बनता है उनको सब दृष्टिकोणों को समझकर मुख्य गौण की व्यवस्था करे तो काम बनता है। तो वो अपेक्षा से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उसमें आया था कि समय सार की जो व्याख्या करूंगा वो किस प्रयोजन से करूंगा, समय सार की व्याख्या करने का प्रयोजन क्या है, और व्याख्या माने अनुभव, अनुभव करने का प्रयोजन क्या है, बोलो। नहीं 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 नहीं, वो चर्चा उसमें नहीं आई है, उसमें ये आया है कि मम परम विशुद्धि भवतु, काय के लिए मेरी पर्याय में जो मलिनता मोह के अनुभव से उत्पन्न हुई है वो मलिनता दूर हो, और मम परम विशुद्धि भवतु मेरी पर्याय में विशुद्ध दशा प्रगटे। देखो उनमें भेद आ गया, मुझ में विशुद्ध दशा प्रगटे की बात नहीं है क्योंकि मैं मलिन हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, मैं मलिन नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु। दोनों बातें आ गई ना इधर, देखो दो की चर्चा चली, पर्याय की भी चर्चा चली और मलिन पर्याय की चर्चा चली। मलिन की चर्चा इसलिए चली कि तुम्हें मलिनता को दूर करना है और निर्मलता को प्रकट करना है, और निर्मल निर्मल पर्याय का हेतु कौन है, तो कहे जब स्वभाव अगर अपना ख्याल में आ जाए कि मैं शुद्ध चेतन मूर्ति आत्मा हूँ और उसमें अपनी पर्याय एकत्र स्थापित कर दे तो फिर पर्याय में विशुद्ध दशा प्रकट की। अब आखिरी बात, गाथा जो उसमें हमने ली थी उसमें पहला शब्द आया था ध्रुव, दूसरा अचल और तीसरा अनुभव। तो वो ध्रुव शब्द किस बात को बताता है, एक कारण तो ये बताइए कि ध्रुवता का प्रकट होने का हेतु कौन है, कारण कौन है, बोलो भाई कौन है उसका हेतु,
सब सुबह पुरुष लोग नहीं बैठे थे क्या आपके प्रवचन में, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो प्रवचन दे रहा था मुझे मालूम नहीं कौन कौन बैठे थे कौन कौन नहीं, क्योंकि मैं अगर इनको देखता तो प्रवचन नहीं दे पाता, बैठे थे और मुझे वहाँ कोई भेद भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपने विषय में लगा हुआ था,
इनके ऐप को आप ढक रहे हो,
ऐसे एवों को ढकना जिनागम में उपहरण होता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं, साधारणी का ऐप उसे दुनिया के सामने जाकर नहीं करना, लेकिन उसके ऐप को ऐप ज्ञान करा देना ताकि वो उसको छोड़े और निर्दोष बने। चलिए मैं तेरा बात ये कर रहा था कि वो ध्रुव का प्रगति किसके अवलंबन से, आत्मा ध्रुव स्वभाव से अनादि अनंत ध्रुव है, उस स्वभाव के अवलंबन से पर्याय भी ध्रुव हो गई, ध्रुव ऐसी हो गई कि अभी तो बदलती थी, कभी विकारी होती थी और कभी वास्तव में तीव्र रूप होती थी मंद रूप होती थी, अब तो एक बार जो निर्मल दशा प्रगति है तो धारा प्रवाह वो जाति की धारा निरंतर चलती रहेगी शादी अनंत काल, इस कारण से वो ध्रुवता उसमें प्रकट हुई। अब ध्रुवता को मैंने बताया था दो प्रकार की पर्यायों के अंतर्गत, मगर अभी पहले दूसरा प्रश्न है कि अचलता क्या है, अचलता कैसे प्रकट होती है, चारों गति, हाँ देखो चारों गति के परिभ्रमण का कारण है विकारी भाव, पर भाव, और वो आत्मा ने पर भाव से विश्रांति पाई है, विश्रांति पाने से अब चतुर्गति के आश्रय बंद नहीं होता है और यहाँ संवर निद्रा चल ही रही है, तो एक बार जहाँ पूरा विश्रांत हो जाती है वो परिणति, पर परिणति तो नियम से संसार का अभाव हो जाता है, और जीव संसार में न रह करके एक समय में वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, मध्य रूप में न रह करके वहां जाके विराजमान होता है, वो अचल दशा है। तो अचल दशा में कौन सा गुण आया और ध्रुव दशा में कौन से गुणों की पर्याय है?
अचल में क्षेत्र, अचल में क्षेत्र आ गया।
ये सब जल्दी बोलना नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ आप बोल दीजिए। अनजीवी गुण या अनजीवी गुण की पर्याय अर्थ पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय और अचल में प्रतिजीवि माने प्रदेशत्व गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय। तो वे दोनों प्रकट होंगे। अब आपने क्रियावृत्ति शब्द भी बोला था, वो प्रदेशत्व गुण में क्रियावृत्ति शक्ति होती है, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है और वहां जाकर के फिर अचल हो जाता है, फिर कभी क्षेत्रांतर नहीं होता। और तीसरा बताया था सिद्धों का गुण अनुपम, सिद्ध भगवान अनुपम क्यों है? क्योंकि इस जगत में सिद्धों के लिए उपमा देने लायक कोई उपमान पदार्थ नहीं है, इसलिए वे कैसे हैं? और एक बात और कही थी, मोक्ष का दूसरा एक नाम है अपवर्ग, कहा था ना, तो वो अपवर्ग क्यों कहा गया है? पड़ता जब सब दिन बोलते ना तो क्या नहीं पड़ता, इधर से पूछ रहे किसी से हमारे पुरुषाचार में तीन की जोड़ी है, इसलिए वो त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, लेकिन मोक्ष इन त्रिवर्ग में शामिल नहीं है, इसलिए उसको अपवर्ग कहते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ मोक्ष का कारण है। समय हाँ, तो वो धर्म का अर्थ पुण्य अर्थ लेना, वो धर्म अर्थ पुरुषार्थ, लेकिन धर्म अर्थ और काम वो तीनों पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ सुखाव आयोजन में काम पुरुषार्थ और तुम्हारे से अर्थ पुरुषार्थ, अगर इसको अपन इस अर्थ में ले कि पैसा वैसा कमाते हैं लोग उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं तो ये पाप भाव है, और तुम्हारे से भोगों को भोगते हैं ये भी पाप भाव है। यूं तो इनकी परिभाषा अलग ढंग से की गई है, वो बात अलग है। अब ये इसमें और प्रश्न आता है कि ये सिद्धों को जब नमस्कार करने लगे तो अमित चंद्राचार्य ने सबसे पहले अपने में ऊपर में किसकी स्थापना की?
सिद्ध
भगवान। और स्थापना करने के बाद दो तरीके से नमस्कार किया, कौन से भी दो तरीके?
द्रव्य और भाव,
द्रव्य स्तुति और
भाव स्तुति।
बहुत बढ़िया। और वो नमस्कार में भाव स्तुति क्या है और द्रव्य स्तुति क्या है?
अपने को भाव स्तुति,
विकल्प अथवा वाणी, ये है द्रव स्तुति और भाव स्तुति अनुभूति। अनुभूति वो है, ये अनुस्तुति दो प्रकार से क्यों की? उसमें अनुभूति रूप जो स्तुति है उसका प्रयोजन क्या था? कि मोह को नाश करना। क्या प्रयोजन था? मोह को नाश करने के लिए वो स्तुति द्रव और भाव स्तुति की है। किसका मोह नाश करने के लिए?
मेरा
है? अरे स्वाका और पर का, यानी वक्ता स्वयं का भी मोह नाश करने को ही बात समझा रहा है और औरों का भी मोह नाश करने के लिए बात बता रहा है। स्व पर मोह प्रहाण आए, स्व और पर के मोह का भरी भांति क्षय करने के लिए वो सिद्ध भगवान को उन्होंने स्मरण किया और याद किया। अब आप विचार करिए, सिद्ध भगवान के आश्रय से मोह क्षय हो सकता है? अब ये तुम्हारी निर्णय, तुम्हारी बुद्धि को छोड़ रहे अभी क्या निर्णय दी रहे हो घर में बताइए। अब वो क्या
प्रश्न बोलते
हैं, आपका टाइम हो रहा है, मैं एक बात बता दूं, मैंने जो पूछा ना आपसे कि क्या पूछा था, सिद्ध भगवान के आश्रय से मोह का क्षय हो सकता है? बात है। यदि वह आश्रय निश्चय रूप है, निश्चय स्तुति रूप है, तो अवश्य मोह का क्षय होता ही है। यदि वह विकल्प रूप है या शब्द रूप है, तो उससे विकल्प अगर शुभ है तो पुण्य बंध होता है, मोह का क्षय
नहीं होता।
निश्चय स्तुति में सिद्ध भगवान कहाँ से आएंगे? निश्चय स्थिति में सिद्ध भगवान आएंगे कहाँ से?
हाँ देखो ऐसे आएंगे।
हाँ जी,
दर्पण में अपना चेहरा आता है कि नहीं आता है? बोलो ना।
आता है।
आता है,
पता नहीं
कहाँ से आता है। दर्पण में चेहरा होता है हमारा भी, मेरे पास चेहरा, लेकिन मेरे चेहरे को देखने के लिए दर्पण चाहिए। हमें अपना स्वरूप देखना है तो सिद्ध भगवान का दर्पण चाहिए। उस दर्पण में जो हम वर्णन उनके स्वरूप का है, वैसा ही सिद्ध समान सदा पद, सिद्ध के समान मेरा पद है, वहाँ से दृष्टि हटाई
स्वरूपी अपने भगवान आत्मा निश्चय स्तुति माने
अपने आप भगवान
अपना सिद्ध भगवान
और व्यवहार
हाजरा हजूर, हाजरा हजूर होने वाला नहीं, होने हाजरा हजूर
अभी हमारे क्वेश्चन शुरू हो उसके पहले दो चीज बताना चाहता हूँ कि ये फ्रांस में से किसी को भी किसी एक पंडित का आंसर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो कैनी बनी आंसर हुआ, आप बता सकते हैं दूसरा आंसर, और ये ऑडियंस में से किसी को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले तो फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
प्रश्न बहुत है तो आप मेरा
शॉर्ट में उत्तर,
हाँ एक एक मिनट में
शॉर्ट में उत्तर
कम जल्दी ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की कि जो उनको क्वेश्चन आने वाले थे उनके जवाब उन्होंने पूछ लिए पहले, फिर भी मैं आपको वही सवाल पूछूंगा। पहला प्रश्न उत्तम चलने के लिए समय साल के मंगलाचरण में स्वानुभूता चकाशते ये बात है, साथ ही नमः समय सारा है ये बोल भी द्रव्य गुण प्रयास से की एक प्रतीक है, क्या इन बोलों को दोनों क्षेत्र
द्रव्य क्षेत्र काल भाव
हाँ बिछोड़ सकते हैं?
मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, मेरा प्रश्न है ये, मेरा प्रश्न है कि समय सार के मंगलाचरण में नमः समय सारा ये बोल भी है और स्वानुभूतिया चकास्ते ये बोल भी है, तो जैसे आपने द्रगुण पर्याय में भावाय स्वभावाय और वो घटाया था सर्व भावांतर रखे थे, तो इन दो बोलों में भी द्रगुण पर्याय को घटा सकते हैं क्या? दूसरी बात, ये पूरे मंगलाचरण को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी घटा सकते हैं क्या?
ये है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और कुछ गहरा प्रश्न है, उसका आंसर ऐसा है कि जो नमः समय साराय कहा गया है वो नमः समय साराय में नमस्कार कैसे करना, तो वो विधि बताई गई है कि स्वानुभूतिया चकाशते, स्वानुभव को ही नमस्कार कहा गया, जो स्वा का अनुभव किया ना वो सिद्ध भगवान को निश्चय नमस्कार हो गया, इसलिए वो नमस्कार कोई अलग चीज नहीं है, नमस्कार कैसा तो क्या अनुभूति में हो गए वो मुझे ऐसे नमस्कार करना है स्वानुभूतिया चकाशते, क्योंकि निःशुद्धात्मा को नमस्कार करना था ना तो निःशुद्धात्मा का नमस्कार वाणी में नहीं होता, निःशुद्धात्मा का नमस्कार विकल्पों में नहीं होता, निःशुद्धात्मा का नमस्कार पर्याय की तरफ देखने से नहीं होता, निःशुद्धात्मा का नमस्कार तो पर्याय जब में एकाकार होती है तब निःशुद्धात्मा का स्वानुभूति से नमस्कार होता है, इसलिए उसमें और कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, वहाँ स्वानुभूति है, अभेद है, अभेद करके उसको निश्चय की जगह व्यवहार बनाने की आवश्यकता नहीं है।
स्वानुभूति तो पर्याय ही है ना,
स्वानुभूति पर्याय, स्वानुभूति
पर्याय ऐसा है वस्तु द्रव्यगुण पर्याय आत्मक ऐसा भी कही जाती है और द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक ऐसी भी कही जाती है, तो जब अस्तित्व धर्म की बात होती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात होती है, एक क्षेत्र को गौण करके क्योंकि क्षेत्र से कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं होता है इसलिए उसको गौण करके द्रव्यगुण पर्यायात्मक रूप से वस्तु की बात कही गई, तो इस श्लोक में द्रव्यगुण पर्याय घटित होते क्षेत्र में घटित चित्त स्वभाव में गुण समय साल द्रव स्वानुभूति को पाया।
नेक्स्ट
चलो सर,
अगला प्रश्न है केदार भाई के लिए। आपके आपके प्रवचन में आपने जो बात की, इसे ऐसा मैसेज मिलता है कि हमें नाम का क्षयोपशम बढ़े ऐसे शास्त्रों को पढ़ने के बदले, जिसमें दृष्टि का विषय कहा गया हो ऐसे शास्त्रों को ही स्वाध्याय मनन करना चाहिए। क्या ये मैसेज बराबर है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी शास्त्रों में से दृष्टि निकल सकती है, कोई क्षयोपशम वाला शास्त्र हो कोई दृष्टि प्रधान शास्त्र हो, ऐसा नहीं होता है। प्रवचन सार ग्रंथ को नाम प्रधान बोला जाता है, मगर वो संयुक्त नाम प्रधान ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने से दृष्टि संयुक्त नहीं होती है। दृष्टि का विषय प्रवचन सार में से भी निकलता है, समय सार में भी निकल सकता है और अष्टभाव में से भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दृष्टि की कमाल कैसी होती है इसकी चर्चा अपनी चल रही है कि दृष्टि को कहाँ ले जाना, नाम का संयोगसम बढ़ाना कि कम करना, वो बात नहीं है। नाम का तो स्वभाव जानना है, वो तो जानना होता ही रहता है, उसमें संयोगसम की नहीं संयोगसम की कुछ बात होती ही नहीं है, वो तो जानना उसका स्वभाव ही है। मगर दृष्टि का दौर कहाँ ले जाना, उस विषय पर अपना चिंतन चल रहा है।
अगला प्रश्न है हेमचंद जी के लिए। अधीन अधीन ग्राह्य के बदले आचार्य अमृत चंद्र ने अनेक अर्थों की सिद्धि के लिए अधीन ग्रहण शब्द का प्रयोग किया है, ये बात का थोड़ा और स्पष्टीकरण करें।
हाँ, आज तो मैंने सामान्य विवेचन किया था, क्योंकि शब्दार्थ से देखा जाए तो अलिंग ग्रहण नहीं, आमन नहीं, लिंग माने कोई बात चिन्ह आदि गड़बड़ों और कोई जो भिजी हुई सिम्टम्स होते हैं उनको कौन किया, और ग्रहण माने जानना, जानने के अर्थ में ग्रहण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पहले दूसरे वर्ग में आने वाले हैं। ये तो हमने सामान कहा था, पहले में लिखा है ग्राह और दूसरे में लिखा है ग्राह्य, माने आत्मा जब कर्ता अर्थ में लिया जाता है तो ग्राह शब्द से लिया जाता है, और जब घे अर्थ में लिया जाता है तो ग्राह्य शब्द में लिया जाता है। तो ये जो अलिंग ग्रह है, मैंने जिस आत्मा को हमें ग्रहण करना है जानना है, तो किसी चिन्ह के द्वारा जब ग्रहण करने योग्य नहीं है तो हमें अलिंग ग्रह लिखना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, अप्राप्त ही वस्तु ऐसा बोलते ना। तो अलिंग ग्रहण क्यों लिखा, तो उस समय अमृत चंद्राचार्य ने खुलासा किया कि अनेक अर्थों की विपत्ति के हेतु ये शब्द कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, और इसमें से 30 बोल उन्होंने लिखा दिया, इतने उसमें आमने नहीं शब्दार्थ में से
नेक्स्ट।
और अलिंग ग्रह की जगह इसलिए उन्होंने अलिंग्रहण शब्द दिया।
ओके, अगला सवाल है उत्तम चंद जी के लिए। आपने सिद्ध भगवान के ध्रुव और अचल आपने पहले आंसर दिया, अभी आपके साथ कोई पूछते हैं, आपके आपने सिद्ध भगवान से ध्रुव और अचल विशेषण की चर्चा में स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय एवं अनुयायी अनुजीवों के प्रतिबिंबी गुणों की बात संक्षेप में कही, कृपया हम सबको सब इसका स्पष्टीकरण करें।
ठीक, देखिए ऐसा है कि जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं, जो पर्याय प्रकट होती है, ये सब अनुजीवी गुणों की पर्याय स्वभाव के आश्रय से प्रकटती है, और उसका उस अनुजीवी गुण की जितनी भी पर्याय होती हैं वे सब पर्याय अर्थ पर्याय कहलाते हैं। अनुजीवी गुण की परिभाषा पंडित परैया जी ने ऐसी लिखी कि भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। तो भाव स्वरूपी क्या है, क्योंकि तो वे जैसे दर्शन ज्ञान चार्थ सुख वीर आदि के भाव है वस्तु में, और वस्तु की अगर आकार हो तो वो प्रदेश से संबंध रखता है, लेकिन आकार को छोड़कर वस्तु में रहने वाले जितने गुण हैं वे भाव स्वरूपी गुण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक अंडा मिठाई को चखे और एक आंख वाला मिठाई को खावे, दोनों में स्वाद में क्या अंतर है? दोनों के स्वाद में तो अंतर नहीं है, मगर एक जगह अंतर है, अंधे को उसका आकार नहीं दिखता और आंख वाले को आकार दिखता है, आंख वाले को डबल आकर्षण भी होता है। वो अगर अच्छे आकार वाली कोई मिठाई है तो वो आकार भी ग्रहण करेगा,
उसका भी मन भोग करेगा ऐसा देखा जाता है। तो आकार से संबंध जिनका होता है वे प्रदेशत्व गुण है और आकार जो है उसी प्रदेशत्व गुण से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो व्यंजन पर्याय होती है, वो द्रव्य पर्याय का नाम पाती है और जो अंजीवी गुणों से होती है वो गुण पर्याय नाम पाती है। गुण पर्याय का ही दूसरा नाम अर्थ पर्याय है और द्रव्य पर्याय का ही दूसरा नाम व्यंजन पर्याय है। और सिद्ध दशा में अर्थ पर्याय भी होती हैं और व्यंजन पर्याय होती है और दोनों स्वभाव होती है। अरहंत भगवान के अर्थ पर्याय तो होती है लेकिन स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती है, उनकी पर्याय अभी विभाव व्यंजन पर्याय चलती है। एक सिद्ध भगवान ऐसे हैं जिनकी पर्याय ध्रुवी हो गई अर्थ पर्याय प्रकट गई और जिनके अचल दशा भी हो गई तो व्यंजन पर्याय भी प्रकट हो गई। ये इस तरह से उनकी दोनों पर्यायों को अर्थ और व्यंजन के रूप में और अर्थ पर्याय अनुजीवी गुणों की होती हैं तो अनुजीवी गुण के रूप में। और अभी हमने एक नई बात बता दी आपके सामने कि अनुजीवी गुणों की पर्यायों को गुण पर्याय कहते हैं और जो प्रदेशक गुण की पर्याय होते हैं उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये निरूपण पंचाष्टी काय में आया है और हम अभी वो विषय चला रहे।
इसमें थोड़ा सा और अनुजीवी गुण भाव स्वरूप गुण है और अभाव स्वरूप गुणों को प्रतिजीवी गुण भी कहते हैं। तो जो चार घाती कर्मों से संबंधित हैं और उनके अभाव से जो प्रकट होता है वो सब स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। तो बताया ही आपने तो प्रदेशत्व गुण के अलावा जो सूक्ष्म हो अवगाहनक हो अभ्यापादक हो ये जो है और इनको प्रतिजीवी गुण कहा है, इनकी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ये अभाव स्वरूप गुणों को प्रतिजीवी गुण संज्ञा है, इनमें अघातिया का नियंत्रण संबंध रहता है और अनुजीवी गुणों की घातन में घातीय कर्म का संबंध रहता है। इतना विशेषण
अगला सवाल तो उत्तम चंद्र के लिए ही है। हमारे आत्मा में अनंत सिद्धों की स्थापना करने की विधि क्या है और उसका फल क्या है?
देखिए सिद्धों को अपने जैसे तो अनंत तो आप भले बोलो, जिसने एक सिद्ध भगवान के स्वरूप को अपने अंतर में स्थापित कर लिया उसने अनंत भगवानों को स्थापित कर लिया, ये जानना क्योंकि उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। अगर संग्रह जैसे देखा जाए तो सब सिद्ध भगवान एक सिद्ध भगवान में ही अंतर्गर्भित हो जाते हैं, सही में ना। इसलिए हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप अंदर में स्थापित करना है। कैसे स्थापित करेंगे कि उनके सिद्ध भगवान के जो स्वरूप प्रकट हो चुका है उनका द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव पर्याय स्वभाव जो प्रकट है और वो द्रव्य कर्म नूर कर्म भाव कर्म से रहित अवस्था वाले हो गए तो उनकी तो प्रकट अवस्था है और यहाँ तो हमारा द्रव्य स्वभाव ऐसा ही है जैसी उनकी दशा स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो गई है। मेरा स्वभाव अनादि अनंत इसी रूप मौजूद है, ऐसा जब हम उनके स्वभाव को देखकर प्रकट स्वभाव को देखकर अपने स्वभाव की प्रतीति करते हैं और हमारा उपयोग ऐसे स्वभाव में जब स्थिर हो जाता है उस काल में सिद्धों की स्थापना मेरे अंदर में हो जाती है। ये विधि है उसकी निर्विकल्प अनुभूति ही सिद्ध स्वरूप की अपने में स्थापना करने की विधि है, विकल्पों से उनकी स्थापना नहीं हो सकती।
अगला सवाल हेमचंद जी के लिए है। आपके प्रवचन में आपने शुक्ल ध्यान किसे होता है और किस बात का इशारा किया था, कृपा करके उसे जरा विस्तार से बताइए।
शुक्ल जैविक पूर्व बोला था वो आठवां गुण से संबंधित था कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। तो जो ऐसा है कि इंद्रभूति गौतम संसार में गई, कुमति से सुमति आदि हो गए, अवधि ज्ञान भी प्रकट किया मुनि दशा प्रकट होते ही और मनापर्य ज्ञान भी हो गया गणधर्म, तो इतना एक साथ इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? क्या महाव्रत में से आ गया, क्या अनंत भगवान में से आ गया? तो जो इस शब्द को बोलते हैं अचानक वृद्धि कहाँ से हो, तो कहते हैं उसके स्वभाव में से हुई है, एक सही बात कही थी। और दूसरा शिवभूति मुनि के लिए कहा था कि इतना अल्प ज्ञान था शिव
लेकिन भेद ज्ञान समय ज्ञान था पूरा स्वयं का। तो वो जब स्वरूपस्थ ध्यानस्थ हुए तो शुक्ल ध्यान उसी को होता है कि जो पूर्वविद शुक्ले जाते पूर्विदा, माने इतना ज्ञान का विकास श्रेणी चढ़ने वाले को हो चुका होता है भाई, और उनका उपयोग शुद्ध हो जो शुक्ले जाते पूर्विदा शुरू से किया। तो ये जो वृद्धि है ये इसके लिए कहा था कि जब वे श्रेणी आरोहण करते हैं तो ज्ञान का विकास अपने आप होकर चला जाता है, वो पढ़ने से नहीं आता, स्वयं में से ही ऐसा सामर्थ्य है जो प्रकट होता है। बता दीजिए
शुक्ल चाहते पूर्व विधा जो प्रयोग किया है, शुक्ल ध्यान के पहले चार भेद बताए, प्रतिपत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, द्विपद क्रिया निवर्ती, ये चार धर्म ध्यान किनको होते हैं, उनके स्वामी कौन है? तो ये शुक्ल ध्यान किनको होते हैं, उनके स्वामी कौन है? तो उन्होंने बताया शुक्ल चाहते आद्य माने आदि के दो, यानी प्रतिपत्व वितर्क और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान पूर्व विद जो पूर्वों के जानकार होते हैं उनके ये दो ध्यान होते हैं। शुक्ले चाद्य आद्य पूर्व विद पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं उनको होते हैं, और ये गुण ये तुम्हारे से दोनों जो ध्यान होते हैं छद्मस्थ दशा में ही होते हैं, बारहवें गुण स्थान तक बारहवें में एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान बारहवें गुण स्थान में ले जाता है और वहाँ ये चलता है। तेरहवें गुण स्थान में तीसरा पाया चालू हो जाता है जिसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौदहवें गुण स्थान में ऊपर के अंदर निवर्ती ये शुक्ल ध्यान होता है, और इसके बाद ध्यान का उपचार मिट जाता है क्योंकि ध्यान संसार अवस्था में ही उपचरित होता है, क्योंकि तो केवली भगवान के ध्यान कहना वो भी उपचार ही है, लेकिन वो उपचार चौदहवें गुण स्थान तक चलता है क्योंकि कर्मों का क्षय ध्यान से होता है और वो चौदहवें के अंत समय तक होता है। 85 प्रकृतियां जो बचती हैं अंत द्विचरण समय चौदहवें गुण स्थान का सबसे छोटा काल है, 5 ह्रस्व अक्षर बोलने प्रमाण काल है, अब इकू रिली ली ये 5 ह्रस्व अक्षर बोलने प्रमाण काल है, एक एक अक्षर के बोलने में असंख्यात समय लगते हैं, अंतिम जब 2 समय बचते हैं आयु के इनके वो जीव के जैसे सिद्धत्व पाना है, और उन अंतिम 2 समय में भी 85 प्रकृतियों को पहले द्विचरण समय में 72 प्रकृतियों को और शेष बची हुई 13 प्रकृतियों को क्षय करके एक समय में विश्वविद्यालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो वो जो चार धर्म चार जो शुक्ल ध्यान है वे शुक्ल ध्यान किनको और उनके स्वामी कौन है किनको होते हैं उसकी चर्चा उस सूत्र में आई है जो आपने भाई साहब ने शुरू किया था, लेकिन इनका प्रयोजन तो ये था कि ज्ञान कोई पर से नहीं होता है, ज्ञान की वृद्धि तो अपने स्वभाव के आश्रय से होती है और वो क्षमता हमारे ज्ञान गुण में स्वयं है, उसके आश्रय से जो पर्याय जन्मती है वो ज्ञान की वृद्धि वाली स्वयं जन्मती है, पर के आश्रय से नहीं।
अगला प्रश्न राकेश जी के लिए है, अनेक शब्द का अर्थ अनंत किया जाए तो अनेक की व्याख्या क्या होगी?
अनेक अंत के 2 अर्थ बताए थे हमने, एक गुणों की अपेक्षा और एक धर्मों की अपेक्षा, यदि धर्मों की अपेक्षा अनेकांत का अर्थ किया जाए तो परस्पर विरुद्ध उसको शक्ति शब्द का भी प्रयोग किया है वहां पर, धर्म जो परस्पर विरुद्ध धर्म है एक अनेक नित्य नित्य तत्त्व आदि इनका नाम इनका प्रकाशित होना इसका नाम अनेकांत है, और यदि हम अनेकांत का अर्थ गुणों की अपेक्षा करें तो अनेक का अर्थ होगा अनंत और अंत का अर्थ होगा गुण, तो जो अनंत गुणात्मकता है आत्मा की वो भी अनेकांत स्वरूप में मानी जाती है, तो आत्मा अनेकांत स्वरूप है या कोई भी द्रव्य अनेकांत स्वरूप है तो वो अनंत गुणात्मक होने से अनेकांत स्वरूप है, और परस्पर विरुद्ध धर्मों के कारण भी वो अनेकांत स्वरूप है। तो अंत का अर्थ जब हम परस्पर विरुद्ध करेंगे तो अंत का अर्थ हो जाएगा धर्म, और जब हम गुण अर्थ करेंगे अंत का तो उसमें अनंत गुणात्मकता इससे आ जाएगी।
इसमें एक बात है,
देखिए इसमें एक बात है, आपका प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जानना चाहते हो कि अनेकांत जो कहा गया है उसमें अनेक शब्द का प्रयोग हुआ
और उसमें अनेकांत में अनंत को भी गर्भित करते हो तो क्या अनेक का अर्थ क्या निकालें? मैं बता दूं क्या निकालना है। बस एक जो नहीं है और उससे ज्यादा जो कुछ भी है
वो
सब अनेक ये बड़ी बात है। अब दो हो संख्या हो असंख्यात हो अनंत हो अनंतानंद हो सब अनेकांत एक ना हो।
गणेश जी ने जो व्याख्या की है इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम कम से कम छोटे से छोटा अनेक भी ले सकते हैं दो वाला और अधिक से अधिक भी ले सकते हैं लेकिन ये कोई अर्थ नहीं है। उसमें तीन अर्थ भी किया जा सकता है चार अर्थ भी किया जा सकता है पांच अर्थ भी किए जा सकते हैं संख्यात भी किए जा सकते हैं असंख्यात भी किए जा सकते हैं और अनंत जैसे तीन अर्थ वाला क्या होगा बताओ। यदि हम तीन अर्थ करें अनेकांत का तीन अर्थ करें तो क्या होगा तो उसका अर्थ है द्रव्य गुण पर्याय मैंने जो भी वस्तु अनेकांत स्वरूप है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। उसका अर्थ है उत्पाद व्यय द्रव्य जो भी वस्तु है वो अनेकांत स्वरूप है तो तीन धर्म वाली है उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों धर्म उसमें होंगे। इसी प्रकार से हम आगे आगे भी जहां तक संभव है लगा सकते हैं।
नेक्स्ट
चेतन भाई ये प्रश्न नहीं है मुझे रिक्वेस्ट है यदि शक्य हो तो आप एक प्रवचन समाचार की गाथा 17 अक्षर पे कर सके तो सब मुमुक्षुओं को लाभ का कारण होगा। अभी प्रश्न नहीं है आत्मा अनुभव नहीं होने में दृष्टि का दोष है कि ज्ञान का
दोनों का साथ में दोष है दोनों साथ में संगत होते हैं ना संगत दर्शन के साथ ही संगत ज्ञान होता है इसलिए मिथ्या दर्शन के साथ में मिथ्या ज्ञान रहता है।
अगला प्रश्न उत्तम चंद जी के लिए
इसमें
हाँ बोलो
वास्तव में तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों का दोष है लेकिन जब ये प्रश्न कोडोमल जी से पूछा चौथे अध्याय में कि आप मिथ्या दर्शन को संसार का कारण कहते हो तो उन्होंने ज्ञान की अज्ञानता सिद्ध की उसके कारण से मिथ्या पोषण करता रहता है तो शिष्य कहता है पर मिथ्या ज्ञान को संसार का कारण कहो तो प्रोटोनिक साहब का जवाब है तो ऐसा है क्योंकि जो ज्ञान जान लेगा यथार्थता को सभी कल्प में तो जब तक सामान्य ज्ञान में निसंगता नहीं आती संशय विपरण तब तक श्रद्धा भी ठीक नहीं होती। तो उन्होंने ये किया है कि अगर सामान्य व्यवस्था से कहना हो तो सामान्य ज्ञान कारण और श्रद्धा कारण लेकिन जब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा लग जाती है तो फिर वो कहते हैं सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। फिर पूछा कि दोनों तो साथ होते हैं तो कहते तो वास्तव में तो एक साथ ही होते हैं लेकिन कारण कार्य की व्याख्या से विचार किया जाए तो ऐसा कहा जाता
कारण कार्य एक ही समय में घट सकते हैं क्या घटते ही समय की आवश्यकता तो नहीं है ना
नहीं एक ही समय में घटते कथन में ये सब
निश्चय से
एक ही समय
17 अक्षर में कहा है ना जाने 25 श्रद्धा करे
जाने 25
17 अक्षर नंबर ऐसा है जानने के बाद श्रद्धान करने का प्रयोजन ये है कि निर्णय पहले ज्ञान में होता है निर्दोष निर्णय ज्ञान करता है श्रद्धान निर्णय नहीं करता है श्रद्धान तो निर्णय के बाद जो प्रयोजन है अपना जो उसको स्वीकार करता है ऐसा नहीं तो श्रद्धान का काम एकदम स्वीकार करने का है पर वो अगर निर्णय गलत होगा तो गलत स्वीकार कर लेगा और निर्णय साचा होगा तो साचा स्वीकार कर लेगा। इस कारण से ज्ञान को कारण कहने में आता है और श्रद्धान को कार्य कहने में आता है। लेकिन मोक्ष मार्ग की व्यवस्था जो आपने बताई कि वास्तव में सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है छेड़ाला काल में ऐसा लिखा है युगपत होते हो प्रकाश दीपक दे जैसे दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है लेकिन प्रकाश वो जलता है ना तब दीपक कहलाता है तो जलना और प्रकाश होने में कोई समय भेद नहीं है।
ऐसा
कहा जा सकता है पंडित जी कि जब हम सामान्य ज्ञान श्रद्धान की बात करें प्लेन ज्ञान श्रद्धान की बात करें सामान्य ज्ञान श्रद्धान की बात करें तो ज्ञान कारण है और श्रद्धान कार्य है लेकिन जब हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात करें तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है।
ठीक
माने सामान्य ज्ञान दर्शन में तो ज्ञान को कारण माना जाता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन को पर्याय की अपेक्षा से फिर
संबंध दर्शन कारण हो जाता है।
इसमें एक पॉइंट और थोड़ा जी सामने उठाया, इसका अर्थ होगा श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय अभिकारी पर्याय, ज्ञान जो उससे दूसरा गुण है उसको विकारी अभिकारी बनाता है। तो फिर उन्होंने वहां कहा है कि इसका स्वास्थ्य दोष है, और दूसरे शब्द में लिखा है कि ये जो ज्ञान सबके पास है प्रयोजन तत्वों के निर्णय में नहीं लगता और अप्रयोजन तत्वों में लगा रहता है, ये ज्ञान का स्वास्थ्य दोष है और ये मिथ्या को पछाड़ सकता है। ये था ज्ञान का इस तरह का।
अगला सवाल उत्तम चंद जी के लिए, त्रिकाली ध्रुव और पर्याय के बीच प्रदेश भिन्नता कैसे है? उसका फॉलो अप है, भाव भिन्नता तो समझ में आती है मगर प्रदेश भिन्नता कैसे होती है?
तो चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है, राजकोट में इसका समाधान बहुत किया है, जबरदस्त किया है। और तो ठीक है, राजकोट में तो दो जने दो प्रकार के पर्चा लेके आ गए, एक वो जो गुरुदेव ने प्रवचन किए और उसमें प्रदेश भिन्नता की बात की, और पूछने वाले ने ऐसा प्रश्न उठाया कि पर्याय में और द्रव्य में कथनचित भेद है कि सर्वथा भेद है? तो गुरुदेव ने कहा सर्वथा भेद, सुनना जरा। और फिर उसने पूछा कि भाव भेद है कि प्रदेश भेद है? भाव प्रदेश भेद है, सुनना जरा। चलवाई नहीं, इतना पूरा बोल दिया तो अब तो कुछ पूछने को रहा नहीं, प्रदेश भेद भी सिद्ध कर दिया, भाव भेद भी सिद्ध कर दिया और कथनचित भी निकाल दिया, सर्वथा ऐसा कह दिया। अब दूसरा पर्चा मेरे सामने आया वेंसी का, जिनके और स्वानुभव क्या स्वानुभूति दर्शन, उसमें का फोटो कॉपी आई, उसमें भी यही क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन में वेंसी के जवाब कुछ इससे अलग थे, अलग ऐसे थे। उसमें उन्होंने कहा यद्यपि वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो द्रव्य पर्याय से त्रिकाल में एक समय को ना तो अलग हुई है ना कभी अलग होती है, ये वस्तु का स्वरूप समझाया, लेकिन दृष्टि के जोर में, दृष्टि के जोर में चूंकि हमें दृष्टि को पर्याय से दृष्टि हटानी है तो वो पर्याय से दृष्टि तब हटेगी कि सर्व प्रकार से जब संबंध दिखेगा ही नहीं तो दृष्टि वहां से हट जाएगी। इसलिए न तो भाव भेद स्वीकार किया, न कथनचित स्वीकार किया और न प्रदेश स्वीकार किया, हम तो सब प्रकार से उसको भिन्न देखते हैं और अपने आत्म स्वभाव को उससे पर्याय से भिन्न देखते हैं। ऐसा देखने में पर्याय से भिन्न आत्मा पे उपयोग चला जाता है और प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, और वही जब प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है तो ज्ञान सम्यक होता है, तो सम्यक ज्ञान बोलता है पर्याय तो द्रव्य से कभी भिन्न थी नहीं, अभी भी है नहीं, आगे कभी होगी नहीं, क्योंकि दोनों की सत्ता एक द्रव्य में है। असंख्यात प्रदेश में आत्म द्रव्य रहता है तो उसके गुण भी असंख्यात है, उन्हीं असंख्यात प्रदेश में रहते हैं और पर्याय भी उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में रहती है, अन्यत्र नहीं रहती है। तो वेंसी को तो ऐसा कहना पड़ा कि अगर तुम उसको सर्वथा भिन्न मान लोगे तो क्या केवल ज्ञान की पर्याय अधर में लटकती है? ऐसा अधर में रहती है, इसलिए इसको केवल दृष्टि के जोर का कथन जानना, और ऐसे कथन अपने घरों में हम प्रयोग करते हैं। हम अपने बच्चे को समझाएंगे, छोटा बच्चा है, किसी का 1000 का नोट हो तो उसको तुम कागज समझना, क्या कहेंगे? और कहीं वो कागज नहीं समझ के घर के 1000 के नोट फेंकना शुरू कर दे तो क्या कहेंगे? मूर्ख है। तो वो कहे कि मूर्ख मैं हूं कि तुम हो, तुम नहीं समझाया हमको, एक कागज के नोट जान के इसको फेंक देना, कागज दे भैया, ये केवल वहां कागज का कह करके मेरा प्रयोजन तो एक पर की वस्तु पे नजर नहीं बिगाड़ना, इतना प्रयोजन विचार के उसको कागज जैसा तुच्छ कहा जिससे तेरी नजर ना बिगड़े, अपनी चीज तो संभाल के रखना, उसको कागज नहीं समझना, ऐसा बताते क्या नहीं। तो ये अपेक्षा के जो कथन होते हैं वे खेच के कहे जाते हैं, और खेच के कहे जाने में अन्य का निषेध भी किया जाता है, लेकिन अभिप्राय में या ज्ञान के जरिए कभी भी खेचतान नहीं होती, ज्ञान में अपेक्षा भी लागू नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञान तो वस्तु को युगपत जानता है, द्रव्य को भी जानता है, पर्याय को भी जानता है और उनके गुणों को भी जानता है,
और उनके स्वरूप को भी जानता है, उनकी सापेक्षता को भी जानता है, उनकी निरपेक्षता को भी जानता है। ऐसा ज्ञान में स्वभाव पड़ा है, इसलिए ज्ञान दृष्टि से देखो तो द्रव्य से पर्याय का न तो कभी अलग हुई थी न कभी अलग होगी। लेकिन द्रव्य दृष्टि से जब देखते हैं तो पर्याय हमारी दृष्टि से अलक्ष्य हो जाती है, हमारा लक्ष्य केवल द्रव्य स्वभाव रहता है। इसलिए हमारे लक्ष्य में अगर कोई मिल जाए तो वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए दृष्टि अगर भ्रष्ट नहीं करना हो तो पर्याय को अपने में शामिल करके नहीं देखना, नहीं देखना। तुम तो ये देखना कि मेरा द्रव्य तो अकेला है, उसमें पर्याय नहीं, उसमें गुण भेद नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो द्रव्य तो बना है, अभेद बना है। सही में ना, ये अपेक्षा से ये दृष्टि के जोर का कथन जानना, वो वस्तु का स्वरूप न जानना।
दृष्टि का जो जोर है वो वस्तु सापेक्ष होता है क्या? नहीं, वस्तु से निरपेक्ष दृष्टि का जोर तो मिथ्या है।
देखो ऐसा है, दृष्टि में सम्यक एकांत होता है। क्या होता है? सम्यक एकांत। और सम्यक एकांत में दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया जाता है, केवल प्रमाण में हम उसके सब धर्मों को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रमाण के बाद जब हमने अपना द्रव्यार्थिक नय का धर्म मुक्त किया तो उसमें पर्यायार्थिक नय के धर्म को निषेध
करेंगे।
अरे तो उस गौर करने में बिल्कुल भी दृष्टि में शामिल नहीं होगा, तब गौर कहलाएगा कि ऐसा लिखा है, दो चक्षु हैं, अब उनमें एक को बंद करो पर्यायार्थिक नय का, और वहां सब ये डाला है सर्वथा बंद करना। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा खोला रहे कोई बात नहीं, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओ। इसलिए पर्याय का सर्वथा निषेध कर रखे, और सर्वथा निषेध में दृष्टि की मुख्यता से बात है, ज्ञान की मुख्यता से बात, इन्हें सर्वथा समझ आ रहा है। और सर्वथा भी सम्यक
निकालते रहे। मेरा यह है कि वो वस्तु सापेक्ष है या नहीं, वो भी जो बात है दृष्टि के विषय की या दृष्टि के जोर में, वो भी बात वस्तु सापेक्ष है क्या नहीं? वस्तु सापेक्ष नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना उसको?
नहीं, मैं एक बात बता देता हूँ। सत तीन प्रकार का कहा प्रवचन साहब, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। आपसे पूछता हूँ, सत अपेक्षा वाला होता है कि निरपेक्ष होता
है? अहेतुक होता है।
अहेतुक होता है, तो इस अपेक्षा से जब हम उसको सत की दृष्टि से देखते हैं और जब हम उनको एक द्रव्य में रहने वाली तीनों सत्ताओं को अभेद सत्ता के रूप में देखते हैं, अभेद रहती हैं, तो हम उनपे ज्ञान की दृष्टि से सापेक्ष पना लगाते हैं। द्रव्य तुम्हारे से दृष्टि के विषय से
द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत जो कहा है वो ज्ञान की अपेक्षा से कहा है कि दृष्टि के जोर में कहा है? वो तो ज्ञान का ही पूरा प्रकरण है। मात्र प्रवचन सार में द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत के जो भेद किए हैं वो ज्ञान में किए हैं कि दृष्टि के जोर से किए हैं?
ज्ञान में भेद किए।
ज्ञान में भेद किए हैं तो तीनों को अलग अलग सत मानने में, और जब हम तीनों को अलग अलग सत मानेंगे तो उसमें हमको एक दूसरे का निषेध करने में, एक की सत्ता का दूसरे में अभाव ऐसा मानने में कहां आपत्ति है? और गुरुदेव ने इसको अत्यंत भाव तक ले गए 181 नंबर के प्रवचन में 181 नहीं, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये ज्ञान का प्रकरण है। ये भगवान दृष्टि के जोर से ऐसा नहीं कहा गया है, ये ज्ञान के ही अंतर्गत हम नयों की शैली में भले ही कह रहे हैं लेकिन है ज्ञान के अंतर्गत स्वीकार। उसका तीन सत्ती सत्ता को अलग अलग जो स्वीकार किया गया है ये ज्ञान से स्वीकार किया गया, अकेले दृष्टि के जोर में स्वीकार नहीं किया गया।
देखिए ऐसा है, जब भी वस्तु के सब धर्मों को स्वीकार किया जाता है तो वो प्रमाण का विषय बनता है, उन धर्मों को जब अपनी अपनी अपेक्षा से अलग ग्रहण किया जाता है तो वो नये का विषय हो जाता है। नये का विषय जो होता है वो प्रमाण का विषय अलग है और नये का विषय अलग है। प्रमाण के विषय में एक ही द्रव्य को त्रिलक्षणा कहा गया है आयन में पंचास्तिका में, और प्रमाण की जगह नये का विषय जब लेते हैं तो उसी द्रव्य को अत्रिलक्षणा कहा गया है।
प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है?
प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म की जो दृष्टि है उससे होती है, और जो अभी प्रमाण होने की बात चली या कहना चाहिए एक वस्तु की संरचना बंधारण की बात चली, तो जब हमें वस्तु का पूरा स्वरूप जबरदस्ती से निर्णय निश्चय करना हो तो तो उसमें द्रगुण पर्यात्मक और पूरी स्वयं स्वरूप चतुष्टयात्मक वस्तु का निश्चय निर्णय होता है, उसमें पर्याय के प्रदेश या गुण के प्रदेश या द्रव के प्रदेश जुदे जुदे नहीं माने जाते ना माने जा सकते हैं। ये पहले वस्तु के स्वभाव की वस्तु स्थिति है। अब हमें जब प्रयोजन की स्थिति करना है, जैसे प्रवचन सार है एक प्रकार से कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ है ये देवध्वनि का सार, उसको पूरा जो भी बीच में भी कहा था ना अभय जी ने भी कि तीन लक्षण परिणाम के लिए ये स्वीक कहता हूँ जो भी परिणाम हो क्योंकि पूरा पदार्थ की संरचना सिद्ध करना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से पूरी वस्तु को मुख्य गोणना करके सबको जैसा है वैसा कहा जाएगा। अब उसमें से मुझे क्या सिद्ध करना तो समय सार में आए अथवा नियम सार करके क्या था देखो मोक्ष को भी पत्र रखा जीवादि भय तत्म हेरम उपाधे मप्पा, तो इसमें क्या है पत्र कह दिया उन्हीं कुंद कुंद आचार्य। अच्छा और जो ज्ञान पर्याय निर्णय करती है अरे शुद्ध ज्ञान पर्याय अनुभव रूप निर्विकल ज्ञान प्रमाण पर्याय जो अनुभव कर रही है वो भी पत्र भोगे गाथा की लड़की क्यों पर्याय शुद्ध पर्याय। तो जब त्रिकाली का शुद्ध अंतर तत्व की मुक्ता है जिससे हमारी दृष्टि उस पर जाए तो अगर समय सार में 81, 82, 83 गाथा में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है क्योंकि प्रदेश बनने ऐसा लगा चंद्र तो वहां पर ये कहना है कि जो सातों तत्व नौ पदार्थ है उनका अपना अपना स्वरूप चतुष्टय पकड़ो। पिछले साल दृष्टि के विषय में राकेश जी ने बहुत अच्छा लिया था इस दृष्टि से एक एक तत्व।
आपका प्रश्न बिल्कुल अलग ये है कि इन प्रमाण में और न्याय में हमारा प्रयोजन काय से सदेगा, ये इनका प्रश्न है और इसका आंसर ये है कि वस्तु का निर्णय करना है तो न्याय प्रमाण से ही होता है, प्रमाण और न्याय पहले नहीं बनता है, पहले प्रमाण का निर्णय हुआ करता है तब न्याय का निर्णय सही कहलाता है अन्यथा न्याय का निर्णय झूठा होता है। इसलिए निर्णय करने में प्रमाण न्याय अधिगम अधिगम जो होता है वस्तु का ज्ञान प्रमाण से होता है पहले, फिर उसके एक एक अंश का ज्ञान भी होता है वो न्याय से होता है, और निर्णय जब न्याय और प्रमाण से हो जाए तो नए प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि इतनी हुई कि निर्णयात्मक समीकल्प निर्णय पर हुआ इतनी प्रयोजन की सिद्धि हुई, इसलिए वे भी प्रयोजन भूत इतने कार्य के लिए हैं। लेकिन अनुभूति की सिद्धि दोनों से नहीं होती, अनुभूति में ना नए होता है और ना प्रमाण होता है, अनुभूति में तो निर्विकल्प दशा होती है, नए को ना लेश प्रमाण को ना प्रवेश निक्षेप के वंश को विध्वंस हो ही जाते हैं, जे वस्तु साधक कही ते कहां बाधक कही बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। इसलिए प्रमाण नए रहित दृष्टि में ही प्रयोजन की सिद्धि होती है, यानी निर्विकल्प अनुभूति में प्रयोजन की सिद्धि है। लेकिन प्रमाण नय का जो आरंभिक कथन है निर्णय के लिए कथन है वो भी प्रयोजन भूत है अप्रयोजन भूत नहीं है। सारा जिनागम नय प्रमाण में ही कहा गया है, एक भी जिनागम ऐसा नहीं है जो नए प्रमाण के बिना कहा गया।
अभी
अभी तो आ गया वही तो मैंने कहा ना वही अपेक्षा सूत्र आ गया मैंने
कहा लिखे दे सकती है।
अच्छा मगर आपका जो प्रयोजन था ना कि किससे कौन प्रयोजन भूत है तो मैंने बता दिया कि सविकल्प निर्णय के लिए प्रमाण और नए प्रयोजन भूत है, निर्विकल्प अनुभव के लिए ना नए का पक्ष चाहिए ना प्रमाण का पक्ष चाहिए, पक्ष मुक्त होकर के अनुभव प्रकट होता है उससे प्रयोजन की सिद्धि होती पक्ष आदि।
आज रमणीक भाई और अभय जी का कोई किसी ने कुछ पूछा नहीं बिकॉज रमणीक भाई का कुछ प्रवचन हुआ नहीं और अभय जी का प्रवचन इतना नहीं हुआ कि कुछ किसी को चांस नहीं मिला।
नहीं पूछा इसको थैंक यू
सभी समझ लिया
और जो बात चल रही थी उसको मैं समापन करना चाहता हूँ।
इधर भी एक क्वेश्चन क्वेश्चन इधर भी
मेरा ये अंतिम सवाल है हेमचंद जी के लिए। आत्मानुभूति के काल में आत्मा का वेतन कैसा होता है उसका बाह्य लक्षण शब्दों से कहा जाता है क्या
शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता पर संवेद गम्य कहा है उसको स्वानुभव गम्य कहा है और उसमें जब अभिव्यक्ता कही है तो उसमें शब्दों में तो इतनी बतलाया जा सकता है जो अभी श्लोक बोला गया उदय दिन रह जी रश्मि जी प्रमाणम
मान लीजिए कोई मोनुमेंट कोई चीज खा रहा है, बहुत प्रसन्न चेहरा है, और उससे पूछा जाए क्या चीज खा रहा है, कैसा है, जैसे वो बताने गया जो वहां पर पदार्थ रखा स्वाद गायब हो गया। इसलिए स्वाद लेते समय कोई विकल्प नहीं है, कोई न प्रमाण का न गए का न कुछ अनुभव के लिए, तो अपन ये समझो कि प्रति समय मैं हूं ऐसी प्रतीति का आचरण अपने को चल रही कि नहीं चल रही, कि सबको चल रही है। तो उसको कहते हैं ना बालावर को पर सबको रोमन आत्मा अनुभव में आ रहा है, मैं हूं की प्रतीति के बिना कोई जीव की सत्ता स्वीकार नहीं की न्याय। अब वो किस रूप में है उसके ऊपर, जहां उसने मैं का यथार्थ असली स्वरूप जान लिया तो उसकी प्रतीति बनी रहती है। तो जरा सा दृष्टांत, यहाँ सब रात्रि में सो रहे हो और कल की व्यवस्था आप कर रहे हो और आप मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं और सब सो रहे हैं, तो बने हेमचंद जी तो हाँ कौन बोलेगा, अभय कुमार की गौतम जी हेमचंद जी, तो क्यों क्यों, क्योंकि जो मैं की अनुभूति है कि मैं हेमचंद हूं, तो भूला नहीं सोते समय की, जैसे हुआ ये मैं हाँ ऐसा है, ऐसे जहाँ गया ही मैं और बाकी मेरे में और कोई नहीं, ऐसा प्रति की जहाँ रहती उसको अनुभूति हो सकती
है। ये जो प्रश्न है मैं एक मिनट बता देता हूँ, आपने एक प्रश्न किया है कि अनुभव को वचनों में कहा जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल साफ बात है अनुभव वचन का विषय है ही नहीं। भैया महिमा ब्रह्म की निमित्त उपादान के दोहे भैया भगवती दास जी के, भैया महिमा ब्रह्म की कैसे वर्णी जाए, वचन अगोचर वस्तु है, कहवो वचन बनाए, वो तो वचन बना के कहते हैं लेकिन अनुभव नहीं कहा जाता है, अनुभव तो अनुभव ही किया जाता है। इसलिए अगर आपको उसे समझना है तो अनुभव करके ही समझना
होगा। अनुभव के बारे में कुछ कहा जा सकता है क्या? अनुभव को नहीं बताया जा सकता, लेकिन अनुभव के बारे में बताया जा सकता है कि
अनुभव के बारे में बताएंगे वो बस अनुभव और नहीं होगा, बाकी सब होगा।
Kevin started the next item. Jiren Ben and Jaydeep Ben and Jiren Ben will present the Sanskriti Karyakram. Jiren Ben, come on.
आप हमारे कार्यक्रम में क्यों सर आइटम बोल रहे हो?
आप बैठे रहिए, हमने डेवलपमेंट पर डॉक्टरेट किया है, डेवलपमेंट पर डॉक्टरेट किया है।
वाह,
तो बड़ी मस्त आएगा भाई।